ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
We have circulated the order of the high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, additional secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, DG DGCA, Special Director from IB and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services.
श्री नायडू ने कहा कि समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश सुझाएगी। समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें परिवारों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं।
The DNA testing is happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. So the government of Gujarat is coordinating with that. They are on the ground since the time of the crash and they have been facilitating with all the efforts, all the measures that are required. So once the DNA testing is confirmed, the bodies are being given to the respected families. The documentation and the procedure needs to be followed. We are ensuring that there doesn't be any lapse in the process or the protocol that needs to be followed.
एयर इंडिया अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों के परिजन और घायलों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल 25-25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये कंपनी द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त है। मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के एक दल ने कल रात अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जिलों के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 328 अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों और गोला बारूद के बड़े जखीरे की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद मणिपुर पुलिस, CAPF और सेना की एक संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान गोला बारूद, विस्फोटक और युद्ध सामग्री के साथ 328 अवैध हथियार बरामद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिसेस के निमंत्रण पर साइप्रस पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। शिखर सम्मेलन में श्री मोदी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा का अंतिम पड़ाव क्रोएशिया होगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले किए हैं। ये हमले तेल अवीव, यरूशलम और तेहरान में किए गए। इसराइल के मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए और 10 से अधिक घायल हो गए। इसराइल की सेना ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल हमले में उसके 7 सैनिक मारे गए हैं। दूसरी ओर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने इसराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि इसराइल ने इस दावे को गलत बताया है। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच के 4th दिन उसने 5 विकेट से जीत हासिल की। एडेन मार्करम ने सबसे अधिक 136 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने 27 वर्ष बाद कोई ICC ट्रॉफी जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 212 और दूसरी पारी में 207 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 138 रन पर सिमट गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।